رشتہ قرآن سے بنا ایسا دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامة، او کما قال علیہ السلام. فرمایا اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا پیارا کلام قرآن مجید نازل فرمایا. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. قرآن عظیم وہ دولت ہے کہ جو انسان کے صرف اس دنیا میں ہی کام نہیں آتی، دنیا میں قبر میں ساتھی ہے اور آخرت میں بھی بندے کے لیے شفاعت کرنے والا ہے، بلکہ جنت میں بھی اللہ کے بندوں کے کام آنے والا ہے. وہ کیسے؟ قرآن خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی برکت سے بندے کو راحتیں مل جاتی ہیں، شفا ملتی ہے. گھروں میں قرآن پڑھا جائے تو خیر و برکت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو وہ فاقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے پاس تنگ دستی نہیں آتی، رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، اللہ اپنے رزق میں جو اسے عطا فرماتا ہے برکت عطا فرما دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے، یعنی محتاجی کو دور کر دیتی ہے. جب انسان کی محتاجی دور ہو جائے گی اس کے پاس رزق ہوگا، ایسا رزق جو اس کے رب نے اسے عطا فرمایا، اور سورہ واقعہ کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، نہ صرف خود کھائے گا بلکہ دوسروں کی محتاجیاں بھی دور کرنے والا ہوگا. آفات و بلیات قرآن کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا قرآن اس دنیا کی زندگی میں بھی انسان کے کام آتا ہے۔ کیسے کام آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ یہ قرآن راہ دکھانے والا ہے، یہ نصیحت بھی ہے۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ یعنی یہ قرآن بیان بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ ارشاد فرمایا اس میں شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں، وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یہ قرآن خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت اور ناموری کی علامت ہے۔ بندے کا چرچا اس قرآن سے ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے اسے عظمت مل جاتی، کیونکہ اس نے اپنا کنیکشن، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیا تھا۔ اس لیے رب ذوالجلال اپنے اس بندے کو جو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اس دنیا میں اس کے نام کا چرچا فرماتا ہے، اسے نام وری ملتی ہے، اسے عظمتیں مل جاتی ہیں، اسے ایک سٹیٹس اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا گنا جاتا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہارا نام وری یعنی چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے حبیب بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور اوروں کو پھر سکھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، جو اس سے تعلق جوڑ لیتے ہیں رب ان کا چرچا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ سبحان اللہ، قرآن میں کیسی برکت اللہ جل مجدہ نے رکھی ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ جل مجدہ اس میں اپنے بندے کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن سورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل، یا پھر فرمایا دو سائبان، یا پھر فرمایا کہ دو پرندوں کی اڑتی ہوئی قطاریں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सुना आपने कि कुरान इस दुनिया में अल्लाह के बंदों के काम आता है, घर में खैर व बरकत हो जाती है, शिफा मिलती है, दुआएं कबूल होती हैं, रहमतें उतरने लगती हैं, बंदे की नामवरी और उसका जो चर्चा है इस कुरान की बरकत से होता है और बंदे को हिदायत मिल जाती है उस रास्ते की तरफ जो सीधा रास्ता है, मुस्तकीम रास्ता है, उस रास्ते की तरफ हिदायत मिलती है, दुनिया की जिंदगी में रहनुमाई है। यही कुरान कब्र में भी काम आएगा। कैसे? कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोजख के घड़ों में से एक घड़ा है। कब्र में बंदा तन तन्हा होगा। बाज रिवायतों में आता है कब्र की दीवारें जब बंदे को अंदर रखा जाता है तो आपस में यूं मिल जाती हैं, जैसे उंगलियां आपस में यूं मिल जाती हैं। उस वक्त मैयत का क्या हाल होगा, जरा सोचिए तो सही। ऐसे वक्त में जिसका ताल्लुक कुरान से दुनिया में रहा, कुरान उसकी कब्र में आएगा, उसकी शफाअत करेगा, उसकी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा, वो बीच में आड़े आ जाएगा और कुरान उस बंदे को अजाब से बचाने का जरिया बन जाएगा। उस शख्स की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। उसकी कब्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुशादगी उसे अता फरमाएगा, तहद्दे निगाह तक वसी फरमा देगा। और इसके बरक्स अगर दुनिया में मगन रहा, दुनिया की ख्वाहिशात में, लज्जात में जिंदगी को बसर कर दिया और कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत ना रखा बल्कि सिर्फ रस्मी और वाजिबी ताल्लुक रखा, अल्लाह के अहकाम से रू गर्दानी करता रहा, उसके लिए कब्र तारीख होगी, जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा बन जाएगी। और उस तंग और तारीख कब्र के अंदर इस शख्स को रहना पड़ेगा। सूरह मुल्क ये सूरा अजाब कब्र से नजात देने वाली है, अजाब से बचाने वाली है और अजाब को रोकने वाली है, इसलिए इसे सूरह मुंजिया कहा गया, सूरह वाकिया कहा गया, सूरह मानिया भी कहा गया। यह सूरत अपने पढ़ने वाले के बारे में झगड़ा करेगी, इसलिए इसे सूरह मुजादिला भी कहते हैं। और यह कयामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगी, इसलिए इसे सूरह शाफिया कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने किसी मकाम पर एक खैमा नसब किया, इत्तेफाक से वहां एक कब्र थी। इन्हें मालूम न था कि यहां पर कब्र है, अचानक उन्हें पता चला कि यहां कब्र है और उसमें एक आदमी कब्र में सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है, यहां तक कि उसने सूरह मुल्क को मुकम्मल कर लिया। उन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने यह बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना दानिस्ता एक कब्र पर खैमा लगा लिया, अचानक मुझे मालूम हुआ कि यह एक कब्र है और उसमें एक शख्स तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क पढ़ रहा था, यहां तक कि उसने सूरह मुल्क को मुकम्मल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह सूरत अजाब कब्र को रोकने वाली है और इससे नजात दिलाने वाली है। मालूम हुआ कि कुरान से ताल्लुक कब्र में भी काम आता है। जी हां, इसलिए दुनिया में कुरान से ताल्लुक जोड़ना होगा ताकि कब्र में इंसान के लिए राहत हो। कुरान से ताल्लुक कयामत के दिन भी काम आएगा। कयामत का दिन होगा, लोग कब्रों से निकलकर मैदान महशर की तरफ जा रहे होंगे, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, मां अपने बच्चे को पहचान न रही होगी और बच्चा मां की परवाह न कर रहा होगा, इसी तरह बाप बेटे और बेटा बाप की परवाह न कर रहा होगा, दोस्त यार रिश्तेदार इस दुनिया में अजीजो अकारिब सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम, हर कोई नेकियां तलाश कर रहा होगा। काश के कोई ऐसा अमल मेरा सामने आ जाए जो मेरे लिए नजात का बाहिस बन जाए। काश के कोई एक नेकी कहीं से मुझे मिल जाए जो मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। उस रोज नफसा नफसी का आलम होगा और उस रोज भी कुरान इंसान के काम आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान पढ़ो क्योंकि वो कयामत के दिन अपने अस्हाब के लिए अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा, सिफारशी बन जाएगा। कुर्बान जाइए, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उस दिन नफ्स नफ्सी के आलम में कुरान आएगा, अपने पढ़ने वाले, अपने सुनने वाले और इस कुरान पर अमल करने वाले, जो रब ने फरमा दिया है इस कुरान में जो अहकाम आए हैं उन अहकाम के मुताबिक जो शख्स अपनी जिंदगी बसर करता रहा, ये कुरान उसके लिए सिफारिश करने वाला बन जाएगा, क्योंकि इसने कुरान को रहबर बना लिया था, इसने कुरान को अपना पेशवा बना लिया था, अपना ताल्लुक मजबूत किया था, सोर्स ऑफ गाइडेंस बना लिया था और फिर कुरान के मुताबिक अमल करता रहा। इसलिए कुरान ने इसकी सिफारिश की और अल्लाह ने इसको जन्नत का हकदार बना दिया। कुरान से ताल्लुक जन्नत में भी काम आएगा, जी हां, सिर्फ दुनिया में नहीं, सिर्फ कब्र में ही नहीं और सिर्फ रोजे माशर ही नहीं, बल्कि कुरान से बंदे का जो ताल्लुक है ये उसे जन्नत में भी काम आएगा। अमल सब दुनिया में रह जाएंगे, नमाज, रोजा, हज, जकात, तमाम आमाल दुनिया में ही रह जाएंगे, मौकूफ हो जाएंगे, लेकिन कुरान जन्नत में भी कारी कुरान से, हाफिज कुरान से, कुरान से ताल्लुक रखने वाले से कहा जाएगा, कुरान पढ़ते चले जाओ और जन्नत के दराजात चढ़ते चले जाओ, तुम्हारा मकाम वही होगा जहां तुम्हारी आखिरी आयत खत्म होगी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान वाला कयामत के रोज आएगा और कुरान अर्ज करेगा, ए मेरे रब अज्जा व जल, इसे खिलात आता फरमा, तो उस शख्स को अल्लाह तबारक व ताला ताजे करामत अता फरमाएगा। कुरान कहेगा, ए अल्लाह और इजाफा फरमा, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को बुजुर्गी का हुल्ला अता फरमा देगा। फिर कुरान अर्ज करेगा, ए मेरे रब अज्जा वजल, तू अपने इस बंदे से राजी हो जा, तो अल्लाह तबारक बताला उस कुरान पढ़ने वाले से, जिसने कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत रखा, उससे राजी हो जाएगा। फिर उस शख्स से कहा जाएगा कि पढ़ते रहो और दर्जात चढ़ते रहो और हर आयत पर एक नेकी ज्यादा की जाएगी। और एक दूसरी रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहिबे कुरान को ये हुक्म होगा कि पढ़ते रहो और दर्जात चढ़ते जाओ और ठहर ठहर कर पढ़ो जैसे तुम इसे दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करते थे, कि तुम्हारा मकाम उस आखिरी आयत के नजदीक है जिसे तुम पढ़ो। इस हदीस पाक का हासिल यह है कि हर आयत पर एक एक दर्जा उसका जन्नत में बुलंद होता जाएगा और जिसके पास जिस कदर आयतें होंगी उसी कदर दर्जे उसे जन्नत में आता किए जाएंगे। जिसने 1 से 12 पढ़ लिया उसको उसके मुताबिक दर्जात मिलेंगे। जो 2 सिपारे याद करने वाला है, यहां तक कि जिसने मुकम्मल कुरान याद कर लिया है और फिर कुरान पर अमल करता रहा, कुरान के हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना और अमल करता रहा, वो शख्स कल बरोज़ कयामत सुरखुरू हो जाएगा। पूरा कुरान पढ़ता चला जाएगा, आखिरी आयत जहां उसकी मुकम्मल होगी वही उसका दर्जा होगा। मालूम हुआ कि कुरान वो अजीम दौलत है जिसके साथ ताल्लुक को कायम कर लेना सिर्फ दुनिया में ही नहीं, और सिर्फ कब्र में ही नहीं, और सिर्फ रोजे महशर ही नहीं, बल्कि जन्नत में भी उस बंदे के काम आता है। बल्कि यूं कहा जाए तो बेहतर है कि कुरान से ताल्लुक उखरवी कामयाबी का और दुनियावी कामयाबी का सबब है कि बंदे की दुनिया भी रोशन हो गई, दुनिया में उसे स्टेटस मिला है, लोगों की निगाहों में अच्छा बन गया है और खुद कुरान पर अमल कर रहा है, लोग उसको देखते हैं, देखने से खुदा याद आता है, सुन्नत के मुताबिक अमल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है, लोग इससे जुस्तजू करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, और ये आजजी और इनकसारी कर रहा है। अल्लाह की नेमतें दुनिया में इसे मिलती हैं, बल्कि नेमतों के दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी दुआ कर देता है तो रब इसकी दुआओं में बरकत पैदा कर देता है, दुनियावी जिंदगी भी कामयाब हो जाती है और उखरवी नजात का भी सबब बन जाता है। ये कुरान किसी जमाने में बंदे को मायूस नहीं करता। कोई कहे कि बचपन में पढ़ लेते तो अच्छा था, हमारी उम्र ज्यादा हो गई अब हम कैसे पढ़ें? आपकी प्यारी दावत इस्लामी मदरसतुल मदीना बालिगान का एहतमाम कर रही है, वहां पर बालिग मर्द हजरात पढ़ने के लिए आते हैं, वो इल्म हासिल करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कायदा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना आ जाता है, कुरान सीख लेते हैं, कुरान की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है। किसी जमाने में कुरान बंदे को मायूस नहीं करता। बचपन में याद किया था तो पत्थर पे लकीर हो जाता है, हाफिजे में महफूज हो जाता है, और अगर जवानी में याद करता है कुरान तब भी इसे मायूस नहीं करता, बुढ़ापे में जाके याद किया तो कुरान तब भी इसे मायूस नहीं करता। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाज़रीन, आज वक्त है, आज अपना कनेक्शन कुरान से मजबूत कीजिए, कुरान पढ़ते चले जाइए, अगरचे कम ही क्यों ना हो, पढ़िए रोजाना और फिर उस पर अमल करते जाइए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रिश्ता कुरान से दिल पे छाया हो नूर खुलवा का, रिश्ता कुरान से बना ऐसा, दिल पे छाया हो नूर खुलवा का।